बातां आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा ऊँटा री बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भैया ने भूम जी भाई यार
गौरा बेन रा गणान गणा
राम 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 गौरा बेन
राम राम भूम जी भाई राम राम
राम राम गौरा बेन आज तो दिन भर तावड़ो हिया तपतो के मार तो देखो हमलो जी करियो को नियो पर थाने डर सु मु तो हटे चौपाल में आई गयो
भूम जी भाई ऊँट वे तो जे जे करा मैं बैठी हूँ जीते डरो देखो गई प्रीनी पचे सुपने माई कदे कोनी आऊला थाने
अरे गौरा बेन मैं तो ऊंट पूछ ऊंट बंधेड़ो है नी उनी बात थाने सो बंधेड़ो हूँ अरे थे जावने की बात कठे करो अरे हाल तो घनी जरूरत है थारी टाबरा ने
बोम जी भाई जरूरत तो देखो बैठी हूँ जीते मने भी थानी या टाबरा री घनी है अर्थे बात करी सूरज रे ताप री तो इन सारू थाने जुन्नो दूओ सुनाई तू
अरे गौरा बहन सगला अड्डी के झट करता सुनाई दो
तो सुनो दुश्मन री कृपा बुरी दुश्मन री कृपा बुरी बली सैन री तास जद सूरज आडंग रचे तद बरसन री आस
वाह सा गावरा बेन जद सूरज आडंग रचे तद बरसन री आस इन आस तो आपा सूरज रो ताप सहन कर लेवा
और बोमजी भाई उठारी बाता माय आपा आवा पावना री आस लेर तो आज पावना कुण पधारिया और बाता कई कराला आपा
अरे गावरा बेन आज चौपाल माय पावना पधारिया है डॉक्टर एमएम अंसारी आप राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधारिया है और आज आपा बातचीत करसा ऊंटा में माँ और नवजात टाबरा री देखभाल
तो सगला पहला यार स्वागत करो राम राम करला
बिल्कुल डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने में करा
राम राम सा बोमजी भाई गौरा बहन राम राम सा और सभी ऊंट पालक भाई राम राम सा
डॉक्टर साहब देखो आपा सगला ही जाना हाँ के माँ कया मुंडो भरीजे है माँ मारे पण मारण नहीं देवे और माँ देखो आपन ही हुए या टो डेरी माँ तो माँ ही है तो बोमजी भाई देखो डॉक्टर साहब ने सगला सु पहला दूजी बात पूछा नी उन सु पहला आ पूछ ला के ऊँटनी रो प्रजनन काल रो भगत कई होया
हाँ बिल्कुल ऊँटो में प्रजनन काल के लक्षण सर्दियों के मौसम में ही दिखाई देते हैं यानी लगभग मोटे तौर पर नवंबर से फरवरी मार्च तक हम कह सकते हैं कि यह प्रजनन काल है और ज्यादातर इसी दौरान सर्दियों के मौसम में मादा अपने बच्चों को जन्म देती है यह एक प्रकार का शारीरिक अनुकूलन भी है कि इस दौरान मादा को चारा अच्छा उपलब्ध रहता है मैं किसान भाइयों को यह भी बताना चाहूंगा कि ऊँटों में गर्भकाल लगभग 400 दिनों का होता है यानी कि 13 महीने जो कि अन्य पशुओं की तुलना में जैसे गाय है उसमें 9 महीने 9 दिन या भैंस है उसमें 10 महीने 10 दिन का होता है इस प्रकार ऊँटनी 2 साल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है यह प्रजनन की बहुत ही धीमी दर है इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि गर्भवती मादा एवं बच्चे का सही तरीके से रखरखाव करें जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो और ऊँट पालन को और भी लाभकारी बनाया जा सके
तो देखो बोमजी भाई सियाले रमाए ने यारो जन्म देवन रो वक्त होया करे टाबरा ने प्रजनन काल जी को है नवंबर से फरवरी मार्च तक रो कह सके है डॉक्टर साहब अपने बतायो
और अब डॉक्टर साहब महाराज का पशुपालक है और जानो चाहे की ऊँटनी गर्भवती है या नहीं ऊँट रो ठाकिया पड़े और कई लक्षण भी हुए कहीं और दूसरी बात के प्रसव से पहला गर्भकाल में ऊँटनी री देखभाल किन बात करनी चाहिए
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गर्भवती मादा को हम कैसे पहचानें हम गर्भवती मादा को पहचानने के लिए कई तरीके से पहचान सकते हैं जैसे कि मशीनों द्वारा जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है हम इससे पहचान सकते हैं या लैब टेस्ट करके पहचान सकते हैं लेकिन जो किसान भाई हैं उनके लिए हम ये बताएंगे कि ऊँटों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जैसे हम नर को जब मादा के पास लेके जाते हैं तो मादा अपनी पूंछ उठाती है यह एक तरीके का संकेत है कि मादा अब गर्भवती हो गई है और जब हमें ये पता चल जाए कि मादा गर्भवती है तो फिर हमें नर के पास से अलग कर लेना चाहिए ताकि नर उसे परेशान ना करे
बोमजी भाई देखो वैज्ञानिक तरीको भी डॉक्टर साहब बता दियो कि गर्भवती है या नहीं है मादा ऊँटनी इन ठा पड़ जावे और देसी तरीको भी बता दियो कि ऊँट पालक ने ठा पड़ जावे कि वो ध्यान रखे के ऊँटनी गर्भवती हुई
और एक छोटी सी बात और है कि ऊँटनी रो ई गर्भ काल में ध्यान कहीं रखना चाहिए
हाँ बिल्कुल हमें जब ये पता चल जाता है कि ऊँटनी गर्भवती हो गई है तो फिर हमें नर के पास नहीं ले जाना है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि गर्भ अवस्था की आखिरी तिमाही में माँ के चारे में हम संतुलित आहार दें, क्योंकि जो आखिरी तिमाही है इसमें बच्चे का जो विकास वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। और जो अभी तक चारा माँ खा रही थी, पहले तो अपने लिए ही खा रही थी, लेकिन अब क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसके चारे का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो हमें संतुलित आहार देना पड़ेगा। अगर हम संतुलित आहार नहीं देंगे तो इससे माँ एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।
पर डॉक्टर साहब देखो जू प्रसव रो समय नेड़ो आवे नी तो वीरा कोई मुख्य संकेत हुए है कि जिनसु की ऊँट पालक ने ठा पड़ जावे कि ऊँटनी रो प्रसव होने वालो है और इन माने देखो बगत कितो लगे।
हाँ बिल्कुल, जो ऊँटों में प्रसव के दौरान हमें समान लक्षण दिखते हैं वह थनों एवं प्रजनन अंगों में सूजन आना, ऊँटों में बेचैनी होने लगती है, वह बार बार उठने बैठने लगते हैं एवं बार बार पेशाब करते हैं और चारा कम खाने लगते हैं। प्रसव में लगभग आधे घंटे का समय लगता है और बच्चा लगभग आधे घंटे में बाहर आ जाता है।
भूम जी भाई
हाँ।
देखो सीधा सीधा लक्षण है जिनसु के ऊँट पालक ने ठा पड़ जावे कि अब प्रसव होने वालो है और बगत भी देखो घणो कोनी लागे,
आधी घंटो
समय है। हाँ। तो उन समय सावचेत हो जाना चाहिए ऊँट पालक ने। पर देखो मारी जी को पखाल है नी वो ही बगत रहते सावचेत हो जाया करे है। तो अब थे क्यों तो पावणारी मनवार सारू एक गीतड़ो काढ़ ही देऊ पखाल मैसु।
बिल्कुल सा।
पण भूम जी भाई देखो पखाल मैसु गीतड़ला तो मैं घणा ही बेला कर लाई हूँ, पण ए तो है सगला मारी दायरा। पण देखो की गीतला भी टाळ लाऊं के हो सके के वे पावणारी दायरो निकल जाओ तो पहला पावणा ने पूछो नी के वे किसो गीत सुननी चावे है, वही काडू पखाल में।
तो डॉक्टर साहब आप गौरा बेन जी पखाल में छु किसो गीत सुनना चाहो?
मैं सुनना चाहूंगा हीर रांझा फिल्म का गाना मिलो ना तुम तो हम
घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। Oh,
तो ऊंट पालक भैया अब आपसे सुन रहे था डॉक्टर साहब की दायरो गीतड़लो गौरा बेनी पखाल चू।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटानी बाता। और आज चौपाल में जानकारी दिवन सर पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर एम एम अंसारी। और आज आप बातचीत करिया ऊंटा में माँ और नवजात टाबरी देखभाल।
और डॉक्टर साहब देखो गीतर ले पहला आप प्रसव रहा मुख्य लक्षण कई हुए ऊंटी बात कर रहा हा प्रसव माने समय की तो लगे आ बात करी। अब आप बात करा के ऊंटनी रे प्रसव रे समय ऊंट पालक ने किन किन बात रो ध्यान रखना चाहिए।
हाँ गौरा बहन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। प्रसव के लक्षण जैसे ही हमें मादा में दिखाई दें हमें मादा को अन्य पशुओं से उसे दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए और माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मादा जो है उसे डर लग जाएगा और प्रसव की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। और जो हम स्थान का चुनाव कर रहे हैं प्रसव के लिए वह बहुत सूखा और स्वच्छ होना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रसव की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा हो या बच्चा बच्चेदानी में फंस गया हो जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में डिस्टोकिया भी बोलते हैं तो पशु चिकित्सक की मदद ले लेनी चाहिए। हमें यह भी विशेष ध्यान रखना है कि जो बच्चे के बाहर निकालने में मदद कर रहा है व्यक्ति उसे अपने नाखून काट लेना चाहिए। अगर हाथ में कुछ अंगूठी या कड़ा पहन रखा है तो उसे भी पहले निकाल दें क्योंकि उससे होगा ये कि जब बच्चे को आप बाहर निकाल रहे हैं तो माँ के अंदर अंदरूनी चोट लग सकती है एवं बच्चे को भी चोट लग सकती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आम तौर पर जो जेर है यानी झिल्ली लगभग एक घंटे में बाहर निकल आती है। यदि 12 घंटे के पश्चात भी जेर पूरी बाहर ना आए तो पशु चिकित्सक से सलाह ले लें अन्यथा बच्चेदानी में संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है।
ओम जी भाई देखो सावधानियां मोकली है छोटी छोटी पर यारो ध्यान नहीं रखा लापरवाही करानी तो ऊंटनी ने नुकसान पहुंच सके है।
और डॉक्टर साहब आ तो बात ही ऊंटनी दे प्रसव सु पहला री देखभाल और अबे बात करा प्रसव रे तुरंत बाद ऊंटनी और नवजात टाबर जिकिन आप टोडियो के वहां बिर देखभाल किन बात आपने करनी चाहिए।
हां बिल्कुल जो प्रसव के एक हफ्ते तक हम जो माँ है उसको खाने में लगभग आधा किलो गुड़ आधा किलो पानी में मिला के दे सकते हैं ताकि माँ को तुरंत ऊर्जा मिल सके। ये तो हो गई माँ की बात। जो बच्चा अभी हाल ही में जिसने जन्म लिया है उसकी नाक व मुंह साफ कपड़े से उसे साफ कर दें ताकि बच्चा सही तरीके से सांस ले सके क्योंकि ये देखने को कई बार मिलता है कि बच्चे के नाक एवं मुंह में कुछ झिल्ली या कुछ तत्व लगे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि माँ एवं बच्चे को एकदम से अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ अपने बच्चे को सूंघ कर ही पहचानती है। यह एक प्रकार की शरीर क्रियात्मक क्रिया है जिसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि माँ अपने बच्चे को सूंघ कर ही पहचानती है और पहचानने के बाद ही दूध पिलाती है। हमें यह भी देखना है कि ऊंट के बच्चों को मिला दें यानी मिक्स कर दें तो भी माँ अपने बच्चों को पहचान लेगी लेकिन बच्चा देने के बाद पहली बार पहचानना माँ को आवश्यक है इसलिए माँ एवं बच्चे को अलग ना करें।
भूमजी भाई देखो सबसे मोटी बात तो आ है कि टाबर ने जिको है माँ सु अलग नहीं करना है उनकी साफ सफाई चौकी तरीके कर देनी है जिनसु के कोई तरह का रोगाणु कीटाणु भी शरीर में रह नहीं जावे पर टाबर ने और माँ ने कन्ने रखना चाहिए क्यों।
बिल्कुल
अब देखो डॉक्टर साहब बात करा टोडी और दूधारू ऊठनी रे आवास व्यवस्था केड़ी होनी चाहिए क्योंकि बात आवे देखभाल री नी तो उन मायने सगला मोटी बात होया करे आवास प्रबंधन री तो आवास प्रबंधन केड़ो होना चाहिए।
वो साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जहां पर ऊंटनी है वहां पर कुछ पेड़ या कुछ शेड हो ताकि अगर ऊंटनी को या बच्चे को गर्मी लगे ताकि वो वहां जाकर बैठ सके एवं अगर उसे भूख भी लग रही है हमने चारा नहीं डाला तो पेड़ से पत्तियां ले सकती है तो हम पेड़ लगा सकते हैं उसके बाड़े में जहाँ हम ऊंट पाल रहे हैं कुछ खाने वाले पेड़ लगा सकते हैं। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जैसे बाड़े में हम चूना मिट्टी हम डाल सकते हैं जिससे अगर कीटाणु होंगे उस मिट्टी में तो वह मर जाएंगे।
तो बोमजी भाई देखो आवास व्यवस्था रो भी महत्वपूर्ण स्थान है कि देखभाल करो तो आवास व्यवस्था जी को है
बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए हवादार होनी चाहिए और धूप भी बिरमाने आवनी चाहिए। और इन साथ साथ एक थी को तो हूँ भी और एक बात पूछ लूँ के
पूछो
डॉक्टर साहब टोडियो और ऊंट नीरे खान पान उचित व्यवस्था किन बात करनी चाहिए माने जगह हमारे ऊंट पालक भाई भी बताओ।
हाँ बिल्कुल, हमें माँ को संतुलित आहार देना चाहिए, जैसे कि हरा चारा जो उपलब्ध हो, स्वच्छ पानी इच्छा अनुसार एवं मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज मिश्रण देना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि मिट्टी में जिन जरूरी खनिजों की कमी होती है वही खनिज चारे में एवं पानी में कम रहते हैं, जिस कारण जानवरों के पोषण में उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए सही अनुपात में खनिज तत्व मिलाकर तैयार किया गया मिनरल मिक्सचर चारे में या अलग से देना चाहिए ताकि इन खनिजों की कमी पूरी की जा सके।
बोम जी भाई देखो, जिन बात आपा ने संतुलित आहार चाहिए नी उन्हीं बात देखो इन जानवरों ने भी संतुलित आहार चाहिए और उनरो ध्यान आपा ने रखना चाहिए। पर डॉक्टर साहब देखो, नवजात टाबर हाजमो नाजुक होया करे तो एडे रे माए उनरो ध्यान किन बात रखना चाहिए, उनरे मायने एडो कई देवनो चाहिए जिनसु के उनरी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े।
माँ बच्चा देने के बाद लगभग 4 दिनों तक विशेष दूध देती है जिसे हम खीस कहते हैं, जो सामान्य दूध से अलग होता है। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह विशेष दूध नवजात बच्चे के लिए एक संपूर्ण पौष्टिक आहार होता है। इसमें जीवाणु रोधक तत्व यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिंस भी पाए जाते हैं। चूंकि बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है इसलिए खीस देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम बच्चे को खीस नहीं देंगे तो बच्चे में संक्रमण, डायरिया एवं मौत भी हो सकती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खीस दे रहे हैं वो शुरू में चारों थनों का ना दें, पहले 1-2 थनों का ही दें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खीस पीने से बच्चे को पचेगा नहीं और दस्त हो जाएंगे।
तो कोई डॉक्टर साहब ये कोई मात्रा हुए है या कोई इनरो वगत भी होया करे कि किस समय देना चाहिए, कितो देना चाहिए?
हाँ, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम 2 थनों का खीस दें, 2 या 3 थन का। अगर 3 थन में दस्त हो रहे हैं बच्चे को यानी पतले दस्त हो रहे हैं तो हम उसे 2 थन का कर देंगे। इस प्रकार हम उसकी मात्रा फिक्स कर सकते हैं।
और पर डॉक्टर साहब कई बार ऐसी स्थिति पे आ जाए कि ऊंटनी जगह थन ने कोई रोग से ग्रसित हो जाए तो इन स्थिति में देखो खींच तो उपलब्ध हुए कोई तो इन वैकल्पिक उपाय कहीं भी ऊंटनी बच्चे वास्ते?
हाँ, ये कई बार ये परेशानी आ जाती है कि माँ दूध नहीं दे रही है या माँ की मृत्यु हो गई है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो दूसरी माँ है हम उसका दूध निकाल कर बच्चे को शुरू में हाथ से पिलाने की कोशिश करें, फिर हम हाथ से नहीं हम किसी बर्तन में भी रख देंगे तो बच्चे को क्योंकि आदत हो जाएगी बर्तन से पीने की, हम इस तरीके से ये उपाय कर सकते हैं।
तो बोम जी भाई देखो वैकल्पिक उपाय भी है, पर डॉक्टर साहब टोडियरी बात करा आपा तो उन दिन भर रहे मैंने दूध कितनी बार पाना चाहिए?
हाँ, हम लगभग 3-4 बार हम दूध बच्चे को पिला सकते हैं शुरुआत में। ऊँटों के बच्चों में एक बहुत ही खास बात होती है, इनमें जो आमाशय है यानी पेट उसकी संरचना एवं भाग वयस्क ऊंट से अलग होते हैं। जैसे कि वयस्क में 3 विकसित भाग होते हैं लेकिन बच्चों में आमाशय का एक ही भाग विकसित होता है जिसे हम एबोमेजम बोलते हैं। लगभग 2 माह के बाद दूध के साथ साथ अगर हम थोड़ा चारा भी देंगे तो बच्चों के आमाशय के दूसरे जो भाग हैं वह भी तेजी से विकास करने लगेंगे, और अगर हम चारा नहीं देंगे तो विकास धीमा पड़ जाएगा और शारीरिक वृद्धि भी धीमी हो जाएगी।
कहने का मतलब है थोड़ो थोड़ो देना और बखत सुई देना नहीं, आने के दिन भर जन भी टाइम लग भी खुआता रहो,
बात ध्यान रखनी है नी।
हाँ,
पर देखो बोम जी भाई पावनारी जानकारी और खजाना देख कर मारी पखाली कूदन लागी के खजाना तो हमारे मायने गाल लाया हो तो काटोगा नहीं बारे तो हमें काट ही दू एक।
बिल्कुल सा आपसे सुनो सा घबरा बहन भी पखाल छू एक फूट रो सो हर जा
समझ मन मायलारे तारी मैं लोड़ी चादर धोया रंग ना चढ़े रे बिन धोया रंग ना चढ़े रे तिरणो किस विध हो समझ मन मायला रे तारी मैं लोड़ी चादर
Yeah.
डोसा खुदाया कुआ बावड़ी जी जारा नीर गंगा जड़ हो गुरु सा खुदाया कुआ बावड़ी जी जारा नीर गंगा जड़ हो कई तो नर नाई ग्यारे मन मायनारे तारी मैं लोड़ी चादर धो साबुण तन की कुंडी बनाए ले रे जारी मन सा साबुण हो प्रेम शिला पर दे फटकारो प्रेम शिला पर दे फटकारो दाग रहे ना कोई समझ मन मायनार रे थारी मैं लोड़ी चादर
दोसा अबार आप सुनियो हरजस गौरा बेनरी पखाल छू इन बेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बाता और आज चौपाल में जानकारी दिवन सर पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर एम एम अंसारी और आज आप बातचीत कर रहे ऊंटा में माँ और नवजात टाबरी देखभाल
और देखो डॉक्टर साहब आप पहला बात करी है कि किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए टोडी रो किन बात ध्यान रखना चाहिए पर सगला को पहला आप बतायो हो कि साधारणतः ऊंटनी जो है टाबरो जन्म सियाले रे मायने होया करे है एड़े रे मायने देखो नवजात टाबर ने सर्दी रे प्रकोप से बचावन रे कई उपाय करना चाहिए
बच्चे जो ज़्यादातर सर्दियों में ही होते हैं और बच्चों में कम तापमान सहने की क्षमता शुरुआती दिनों में विकसित नहीं होती है तो हमें सर्दी के प्रकोप से बचाना बहुत ज़रूरी होता है तो सर्दी से बचाने के लिए हम ऊँटों के बच्चों को एक बंद जगह पर रख सकते हैं अगर घर में कोई बोदी या चादर वगैरह है हम उससे भी बच्चों को ढाँक सकते हैं ताकि वह सर्दी से बच सकें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा नमी वाली जगह पर भी ना रखें क्योंकि ज़्यादा नमी होने से संक्रमण होने की संभावना हो जाती है
तो ऐ तो बातें ही सर्दी से बचावन दी और अब डॉक्टर साहब अब आर देखो महीना ऐ चाले है बैसाख रो और बैसाख ले जेठ तक अठे जिकी गर्मी पड़े न बा पड़े प्रचंड खूब गर्मी पड़े सा मिनक रे भी जीवन दोरो हो जाओ तो इन बेला महाराज जी का पशुपालक भाई है ऊंट पालक भाई है बे आप रे ऊंट और ऊंटनी और बीरा बच्चा दी देखभाल किया कर किया बचावन चाहिए बिया ने ई गर्मी
हाँ गर्मी भी जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा पड़ती है जहाँ ऊंट पाए जाते हैं तो गर्मी से बचाने के लिए हम दिन के समय में हम किसी शेड वाले जैसे कि पेड़ लगा सकते हैं या कोई छोटा घर बना सकते हैं ताकि खपरेल का घर बना सकते हैं ताकि बच्चों को या माँ है उसको गर्मी से बचाया जा सके
और डॉक्टर साहब देखो जो अब है जानकारियां दी आपके ऊँटनी रो किया ध्यान रखना चाहिए, टोडी रो किन बात ध्यान रखना चाहिए, प्रसव कद हुए प्रसव रे समय किन बात रो ध्यान रखना चाहिए। जो ऊँट पालका ऊँटारी बात सुनिए बन तो अब बात ठा पड़गी, पर कई ऊँट पालक है कोई भी जानकारी लेनी आप चाहे तो कई वे आपसे मिल सके है आप संस्थान में आ सके है कई?
हाँ बिल्कुल, हमारे संस्थान में आ सकते हैं पशुपालक, अगर किसी समूह में भी आना चाहते हैं तो हम उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले हमारे यहाँ आकर निदेशक महोदय से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी।
लेकिन सुविधा है कि वे आ सके।
और डॉक्टर साहब आप खुद गांव-गांव ढाणी ढाणी रे मायने जार कोई अड़ा प्रशिक्षण शिविर लगाओ है कि जठे मारो ऊँट पालक आ और जानकारियां ले ले आपरे गांव ढाणी में बैठो?
हाँ हम भी जो जैसे कि सचल चिकित्सालय हम चलाते हैं जिसमें हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, जो भी पशु चिकित्सा के लिए जो भी जरूरी है वो मदद हम उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों के लिए।
तो बोम जी भाई देखो यार संस्थान में आर भी ऊँट पालक जानकारी ले सके है, प्रशिक्षण ले सके है, गांव गांव ढाणी ढाणी जार भी ऊँट पालका ने
प्रशिक्षण
देवे है। और देखो सा ऊँट पालको माँ मेवे रो रूख वे और टाबर वे घर रो चांदनो, तो जिन बात घर में माँ और टाबर रो ध्यान रखो नी उन्हीं बात ऊँटनी और टोडिये रो ध्यान राखिया जिन बात डॉक्टर साहब जिको बात बताई है वाने गोल गांठ बांध राखिया। पर बोम जी भाई अबार देखो एक बात रो ध्यान तो थाने भी राखनो पड़ी,
यहाँ
भूलिया की पार पड़ी ठिकाणो कुण
बताए? ठिकाण तो हूँ बताऊ सा, लिखो ऊँटारी बात कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर और माने आपरे कागदारी अडी कैसार आपरे कागज जुई में कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और विषय भी देखो लाली बार कागज में आयोड़ हो
और नित नुआ ऊँट पालक आपसु जुड़ रहा है तुम्हारे सर देखो ठिकाणो तो बताओ
गणो और हो सके अगलो विषय आप रही है तो बेगा बेगा माने कागज लिखो और भी मैं लिखो आप जिकी भी समस्या है या कोई भी आप सुझाव देना चाहो तो बीरो भी स्वागत है। ठिकाणो लिखो सा ऊँटारी बात कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर एम एम अंसारी और आज आप बातचीत करी ऊंट में माँ और नवजात टाबरारी देखभाल। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और मारे ऊंट पालक बहन इति आची चोखी ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा
राम राम सा।
तो सा ओह ऊंटारी बात कार्यक्रम संयोजक श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षदी। अबे आज्ञा दिलाओ सा राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बातां आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।